اسے مذاق میں بھی غلط فیصلہ نہیں دینا چاہیے. میسج کیا ہے؟ یعنی جو آپ کا قاضی القضاہ ہے جو تمام آلات ادراک سے استفادہ کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے, اسے کبھی مذاق میں بھی غلط فیصلہ نہیں سنانا چاہیے, ورنہ خدا کی نظر میں وہ چیز جہالت سمجھی جائے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں, اس چیز میں اپنے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جنہیں مذاق میں تم سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوں, میں خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے. تو یہ اسی قوت فیصلہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو تمام ادراکات کو اخذ کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سناتی ہے, کہ اسے کبھی عذرو مزاح بھی غلط فیصلہ صادر نہیں کرنا چاہیے. فیصلہ سمجھ رہے ہیں, نتیجہ فیصلہ کبھی مذاق میں بھی غلط نہیں, ہمیشہ حق مطابق ہے. دوسری آیت, قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون, یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 64 ہے. اس آیت سے پہلے توحید کا ذکر ہے, خدا کی نشانیوں کا ذکر ہے. پروردگار یہ کہتا ہے کہ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس نظام کائنات کے حسن و اعتدال کا مشاہدہ کرنے کے بعد کیا تم یہ فیصلہ سناتے ہو کہ میں غیر از خدا کی بندگی کروں؟ قل, اے پیغمبر, افغیر اللہ تأمرونی, ان سے کہہ دو کہ کیا تم غیر از خدا کی بندگی کا حکم دیتے ہو مجھے؟ اور بات کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ ایھا الجاہلون, یعنی تمہاری جو قوت ہے فیصلہ دینے والی اس کی جہالت کی پیک یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ دے اس پورے نظام زندگی کا مشاہدہ اور اس میں تفکر کرنے کے بعد کہ خدا کی نہیں کسی اور کی پرستش ہو. سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ اگر قوت فیصلہ انسان کی, یعنی میں اس کو قوت عقل استعمال کرنے سے گریز کر رہا ہوں, کہ وہ قوت عقل کب بنتی ہے؟ جب حق کے مطابق فیصلہ دیتی ہے. اور وہی قوت جہل بن جاتی ہے کہ جب حق کے مخالف فیصلہ دیتی ہے. تو آپ نے غور کیا ان دونوں آیتوں میں کہ جہل کا تعلق کس چیز سے؟ فیصلہ دینے والی صلاحیت اور قوت سے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہ فیصلہ دینے والی صلاحیت, اس کو اتنا محتاط رہنا چاہیے کہ کبھی بھی مزاح میں بھی غلط فیصلہ نہ سنائے. وہ چیز بھی خدا کے نظر میں جہالت میں ہی آئے گی. دونوں آیتیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ قوت فیصلہ کا جہل ہے کہ جو حق سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مخالف. تیسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 65, یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ. یہ اس ان آیتوں میں تذکرہ ہے کہ جناب ابراہیم, کیونکہ وہ ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ جو تمام اہل کتاب میں محترم ہیں, یعنی تینوں چاروں کتابوں کے ماننے والے حضرت ابراہیم کو پیغمبر خدا اور قابل احترام ہستی. تو اب جب نصرانی اور یہودیوں کا جھگڑا شروع ہوا تو ان میں کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم نصرانی ہیں, وہ کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں, یہ جھگڑا. تو یہ آیتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم, کہ تم کیوں کر ابراہیم کے بارے میں حجت کرتے ہو, جھگڑا کرتے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ, جبکہ توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد آئی ہیں. تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جو توریت کا پیروکار ہے وہ یہودی کہلاتا ہے اور جو انجیل کا پیروکار ہے وہ نصرانی یا عیسائی کہلاتا ہے. تو ابراہیم کے بعد ہی آئیے, تو ابراہیم جیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ अफला ताकलून, है ना कुव्वत फैसला की बात, कि जब तुम्हें एक बात तुम्हारे सामने, और यही वो चीज है कि जो हमें इनकरेज करती है कि हम कुरान करीम को इस तरीके से पेश करें, क्योंकि बिल्कुल सादा अल्फाज में कुरान ने बात की। अब देखें कोई इसमें एज पेश नहीं, कोई फलसफी इस्तेलात नहीं इस्तेमाल, सादा सी लॉजिक है कि तुम जो इस बात पर लड़ रहे हो कि इब्राहिम यहूदी है या नसरानी, तुम असल मेयार पर ही बात पूरी नहीं उतर रही। यानी अगर आप देखें तो गहराई भी बहुत ज्यादा है कि असल जो मेयार है उसको तो देखो कि तुम्हारे पास यहूदी या नसरानी होने का जो मेयार है, क्या उनमें से किसी मेयार पर इब्राहिम पूरे उतरते हैं? अगर नहीं पूरे उतरते तो ये बहस ही लहा से अफला ताकलून। यानी ये जिस किस्म के इस्तेदलाल की बात यहां की गई उसका ताल्लुक किससे? तफक्कुर से। यहां पर अकल किसके नतीजे में आ रही है? तफक्कुर। क्योंकि तफक्कुर जो है जरूरी नहीं है कि वो समात और बसारत के हमरा हमेशा, बल्कि तफक्कुर अक्सर औकात समात और बसारत के बगैर भी होती है। यानी आपके जहन में बहुत सारी बातें होती हैं कि जिनको आप कंबाइन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तफक्कुर के लिए जरूरी नहीं है कि आप सुने या देखें एक वक्त। तो ये तफक्कुर ताकुल बादस तफक्कुर, ये जिस ताकुल की बात की गई अफला ताकलून, ये बादस तफक्कुर है कि ये तुम्हारे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन, इसमें तुमने फिक्र किया, इसका तजिया किया, तजिया करने के बाद क्या तुम फैसला नहीं देते कि तुम गलत बात कर रहे हो? यानी यहां पर जो कहा फला ताकलून, यानी क्या कहा कि क्या तुम्हारी कुव्वत फैसला ये फैसला नहीं देती कि तुम ये बेकार बहस कर रहे हो? और उसकी दलील, उसका मुकदमा क्या है? ये तजिया और ये तफक्कुर है। तो बात समझ में आ रही है आपको कि कुव्वत आकला कहां पर पाई जाती है? इन सब के ऊपर, तफक्कुर, समाअत, बसारत, इन सब के ऊपर। वो आखिरी कुव्वत जो फैसला सुनाती है कि समाअत, बसारत और तफक्कुर आपको हक समझाते हैं और अकल आपके लिए आखिरी फैसला सादिर करती है कि इसके पीछे जाना है या इसके मुखालिफ जाना है। आखिरी आयत जो सूरह मुल्क की आयत नंबर 10 है, वकालू लव कुन्ना नस्मऊ औ नअक्लु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अहले जहन्नम, अहले दोजख क्या कहेंगे? लव कुन्ना, काश हम होते, नस्मऊ जिन्होंने सुना, औ नअक्लु या वो जिन्होंने अक्ल इस्तेमाल की, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर तो हम असहाब जहन्नम में से नहीं होते। यहां पर अक्ल किसके बाद आ रही है? समाअत के बाद आ रही है। यानी जो कुछ इंसान, अच्छा यहां पर लफ्ज नस्मऊ क्यों है? इसलिए कि दावत अंबिया जो है वो बुनियादी तौर पर सुनी जाती है। यानी पैगंबर की जो दावत है वो बुनियादी तौर पर सुनी जाती है, या कम से कम उस दौर में यही था। यानी आज आप कहते हैं आप कुरान है पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पढ़ना बहुत बात की बात है, और इसमें भी ज्यादातर समाअत का जिक्र ज्यादा है कि आप सुनते हैं, सुनने के बाद उसको तफक्कुर और तज्जिया करते हैं और फिर आपकी अक्ल एक फैसला सुनाती है। यानी जो कुछ हमने सुना उसको हक को जाना, उसके मुताबिक क्यों नहीं फैसला दिया? काश के हम ये काम कर लेते तो आज जहन्नम में ना खड़े होते। तो ये है इंसान, परवरदिगार ने इंसान को ये बनाया कि एक उसका जिस्म जाहिरी है, लेकिन उस जिस्म जाहिरी के अंदर वजूद इंसानी की असल छुपी हुई है। उस असल का नाम है नफ्स, और नफ्स मुख्तलिफ किस्म के हुआ से, आलात से इस्तेफादा कर रहा होता है। जो हमारा निजाम बातनी है वो भी तकरीबन उसी अरेंजमेंट पर है कि जो हमारा निजाम ज़ाहिरी है, ठीक है। उसका भी कल्ब है, कुव्वत मुद्रका है, आलात समाअत और बसारत है, फैसला देने वाली ताकत। आखिर में अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग सवाल भी कीजिएगा। पिछली दफा हमने जिक्र किया था थोड़ा सा रूह के हवाले से, मैं उस चीज को भी थोड़ा सप्लीमेंट कर दूं, उसको आगे बढ़ा दूं, क्योंकि रूह और अक्ल के मायना दो बिल्कुल वाज़े तौर से अख्तलाफ के साथ हैं, हमारी किताबों में भी और शरा में भी और कुरान में भी, कलाम मासूम में भी, उनका समझाना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं जिस अक्ल की बात कर रहा हूं वो अक्ल क्या है जो मैंने आपके सामने बताया, इंसान के अंदर आखिरी फैसला देने वाली ताकत, ये अक्ल है। लेकिन अक्ल असल में एक हकीकत भी है जिसका ताल्लुक बहुत ऊपर के आवाले से है। अगर आपको वो तरतीब याद हो तो मैंने आपसे कहा था हम इस वक्त आलम मुल्क में हैं और हमारे ऊपर आलम मलकूत है, ठीक है। आलम मलकूत के ऊपर भी बहुत सारे हवाले हैं जिनमें से बहुत ऊपरी सतह पर कहीं आलम अकल पाया जाता है, बहुत ऊपर, और उनके आलम अकल के अंदर पाई जाने वाली मखलूकात को भी मौजूदात उकूल कहा जाता है। बाज जगहों पर लफ्ज अकल इस तरीके से भी इस्तेमाल हुआ, जैसे आप पैगंबर अकरम से के कुछ अहदीस में कि खुदा ने सबसे पहले किस चीज को खल्क किया, अकल को खल्क किया। अब इस अकल को इससे ना मिलेगा कि वो अकल जो मखलूक अव्वल है, वो अकल जो आलम है, अकूल की जो मौजूदात हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मौजूदात मुजर्रद है, यानी मादे से पाक है, उनमें किसी किस्म का मादा नहीं पाया जाता, इतना ज्यादा खुदा से मकाम कुर्ब में, वो अकल अलग चीज है। यानी ये डिफ्रेंसिएशन जहन में रहे कि हम जिस अकल की बात कर रहे हैं वो इंसान के नफ्स के लिए एक कुव्वत और एक सलाहियत का नाम है कि जो हक को समझने के बाद आखिरी फैसला देती है, और इसको बार बार कुरान ने एड्रेस किया है अफला ताकिलून अफला याकिलून के नाम से, ये वो अकल नहीं है। इसी तरीके से रूह का जो लफ्ज है ये भी तो बिल्कुल डिस्टिंक्टली डिफरेंट मौजूदात के बारे में है। एक रूह वो है कि जिसका ताल्लुक आलम अमर से है, वो भी ऊपर ऊपर की दुनिया की बात है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, वो रूह एक अलग मखलूक है जो आलम अमर से में पाई जाती है, आलम अमर से जिसका रिश्ता है, जो रूह है इंसानी बल्कि रूह है हैवानी है। वो क्या चीज है कि जब नफ्स जिस्म की तरफ मुतवज्जे होता है कि जिस्म से काम ले, तो इस तवज्जो की वजह से जिस्म में एक तवानाई पैदा हो जाती है जो उसे हरकत देने के लायक बना देती है। इस तवानाई का नाम रूह है। लेकिन ये रूह, और आप कहें तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, ये रूह एक है, हरगिज नहीं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दो अल्फाज ऐसे हैं कि जिसमें बहुत मुआवजा होता है कि जब हम कहते हैं इंसान की रूह, और बल्कि मैंने पिछली दफा आपसे कहा था कि इंसानों की तरह हैवान भी हरकत करते हैं, इंसान भी कुव्वत इदराक रखते हैं, इंसान भी कुछ ना कुछ डिसीशन मेकिंग पावर रखते हैं, तो उनके अंदर भी बज़ाहिर एक रूह जैसी चीज पाई जाती है। तो रूह हैवानी भी है, रूह है इंसानी भी है, और रूह मलकूती भी है, रूह अमरी भी है। तो ये इनको आपस में कभी मिलाइएगा नहीं कि जब हम अपनी रूह की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वो तवानाई, वो एनर्जी जो जिस्म में फ्लो करती है और जिस्म को मुख्तलिफ चीजों में काम करने के काबिल बनाती है। ये रूह है जो हमारे पास है। वो रू नहीं, रूह अमरी नहीं, बोले रूह मिन अम्र रब्बी, वो रू नहीं, ये तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह, वो रूह नहीं। उस पर फिर हम बाद में बात करेंगे कि उस रूह और इस रूह में क्या राबता पैदा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये एक अलग सवाल है। लेकिन रूह और अकल के हवाले से इन दो एरियाज को बिल्कुल अपने जहन में वाज़ेह रखिए कि जब आप इंसान के लिए इन दो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, और जब कुरान ने या अहादीस में रूह और अकल के अल्फाज एक और सेंस में आए हैं हवाले में बाला के हवाले से, वो किस तरह इशारा करते हैं, ये दो अलग बात है। एक छोटी सी मिसाल दे दूं मैं आपको, जो रूह जो हमारे अंदर पाई जाती है कि आपके सामने जाहिर है कि अब हम सबके सामने कंप्यूटर मौजूद है, कंप्यूटर में असल चीज जो रन करती है, जो वर्क करती है, वो क्या है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम है। प्रोग्राम के जो वर्क करता है, चलता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर आपको फंक्शन करता हुआ नजर आता है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम कहां पाया जाता है, आप कह लें मिसाल के तौर पर एक सीडी में, ठीक है, या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर। अगर सीडी या हार्ड डिस्क को आप देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं, कोई जान नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ऐसी चीज रखी हुई। लेकिन जब ये प्रोग्राम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, यानी अपने आप को जाहिर करना चाहता है, तो ये बुनियादी तौर पर दो चीजों को चाहता है। इस प्रोग्राम को अपने आप को जाहिर करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक वो पूरा हार्डवेयर जिसके अंदर प्रोसेसर और मॉनिटर और सारी चीजें, कीबोर्ड और माउस, और दूसरी पावर सप्लाई है। इन दोनों में से एक चीज भी नहीं होगी तो प्रोग्राम अपने आप को जाहिर नहीं कर पाएगा। प्रोग्राम जो है वो है नफ्स, मिसाल है नहीं, है गलत वाला है, मतलब मिसल। इस प्रोग्राम की मिसाल क्या है, नफ्स है, कि ये नफ्स अपने आप को जाहिर करना चाहता है लेकिन खुद से नहीं कर सकता। अगर ये सीडी पड़ी रहेगी 10 साल पड़ी रहेगी, उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो उस पर ही रह जाएगा, कभी भी उसकी क्वालिटीज जाहिर नहीं हो पाएंगी। उसकी क्वालिटीज कब जाहिर होंगी, कि जब वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट होगा, और सिर्फ कनेक्ट होना काफी नहीं है बल्कि उसके अंदर पावर भी दौड़ रही है, तब वो प्रोग्राम अपने आप को एक्सप्रेस करने के काबिल होगा। इसी तरीके से इस नफ्स को अपने को जाहिर करने के लिए हार्डवेयर चाहिए, वो हार्डवेयर आपका जिस्म है, लेकिन खाली जिस्म के जरिए से काम नहीं चलेगा, जब तक कि उसके अंदर वो तवानाई भी सर्कुलेट ना करे जो जिस्म को हरकत देने का सबब बनती है। उस हरकत देने वाली तवानाई का नाम है रूह। लेकिन फिर वही कहूं, ये इंसानी हक के अंदर इसको रूह अमरी ना समझना शुरू कर दीजिएगा, कि हमारे पास वो तवानाई है कि जो जिस्म को हरकत देने के काम करने के काबिल बनाती है, और हमारे पास वो हार्डवेयर है कि जिसके जरिए से हम काम कर सकते हैं, और इन दोनों से इस्तेफादा कौन कर रहा है, काम कौन ले रहा है, नफ्स यानी मैं। और ये मैं कहां पर पाया जाता है इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये नफ्स कहां पर है मजहूल है, किधर मौजूद है, कहाँ है। इंसान का जिस्म जब उसके अंदर से वो हरकत करने वाली तवानाई खत्म हो जाती है, हरकत देने वाली, ये नफ्स कहाँ चला जाता है, किस शक्ल में होता है, किस हाल में होता है, खुदा बेहतर है। लेकिन ये है इंसान के वजूद की एक ओवरऑल कंपोजिशन जो हमें समझ में आती है मुख्तलिफ तरीकों से। अब आप सवाल करना चाहें, अगली दफा से इंशाल्लाह हम आयत सुबों पे बात करेंगे कि जहां पर बात हुई कि इन्ना हदैना उस्सबील, यानी इंसान को पहले जिस्म उसका कामिल किया, उसके बाद उसको एक गैर मादी पहलू अता किया تاکہ انسان عالم عوالم بالا کی طرف ترقی کر سکے. اس غیر مادی پہلو کو دینے کے بعد پروردگار نے کہا کہ ہم نے اس کو سبیل یعنی رستے کی ہدایت دی. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سبیل کیا چیز ہے, یہ ہدایت کیسی ہے, یہ ہدایت کس طریقے سے دی گئی ہے. اس بات کو ہمیں انشاءاللہ کرنا ہوگا, اگلی دفعہ سے اس پر بات کریں گے. اب آپ اس موضوع پر سوال کرنا چاہیں تو کہیں, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اس کے نوٹس بنا کے کم از کم 8-10 صفحات میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا. اس میں نہیں ہے, یہ اقسام نہیں حالتیں, اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. میں دو جملے میں آپ کو سمجھا دوں کہ نفس کی قسم کوئی نہیں ہوتی. قسم جو بیان کی گئی ہے, بلکہ نفس کی اگر آپ قسم بیان کریں گے تو وہ نفس کیا ہے, آپ کہیں گے حیوانات کا نفس, نباتات کا نفس, جنات کا نفس, ملائکہ کا نفس, یہ قسمیں ہیں. یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں. نفس سے انسانی کی کوئی قسم نہیں ہے, وہ ایک ہی چیز ہے. نفس سے انسانی کی مختلف حالتیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اقسام جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں نفس کی, کہ نباتات کا نفس ایک الگ چیز ہے کہ جو صرف نشو نما کی صلاحیت رکھتا ہے. حیوانات کا نفس ایک الگ قسم کا نفس ہے کہ جس میں حرکت بھی ہے, چلنا پھرنا بھی چیزیں, لیکن وہ جب تک حیوان کے دائرے میں رہے گا یعنی وہ قوت عاقلہ سے محروم ہے, تو اس لیے وہ اوپر نہیں اٹھ سکتا اس جگہ سے. یہ الگ الگ قسمیں ہیں نفس کی, لیکن نفس انسانی ایک ہی چیز ہے. اس کی حالتیں, ایک حالت اس کی ملہمہ ہے, ایک حالت امارہ ہے, ایک حالت لوامہ ہے, ایک حالت مطمئنہ ہے, پھر راضیہ ہے, مرضیہ ہے. یہ نفس کی مختلف حالت ہے. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ کی قوت فیصلہ, آپ کا قاضی القضاء ہمیشہ حق کے مطابق فیصلہ کرے گا, آپ کا نفس درجہ بدرجہ اوپر جائے گا. اگر آپ کا قاضی القضاء سمجھ میں آنے والے حق کے مخالف فیصلہ دے گا, نفس ایک ایک اسٹیپ نیچے جائے گا. جی, یعنی رسول اللہ کا نفس جو ہے وہ مرضیہ والی کیفیت پر, آئمہ کا اور پیغمبر کا نفس جو ہے وہ مرضیہ والی کیفیت پر, عام انسانوں کا جو نفس ہے وہ امارہ والی حالت میں. امارہ والی حالت میں کیسے؟ کہ ان کی جسمانیات نفس پر غالب ہیں اور نفس کو آرڈر کرتی ہیں کہ میری پسند کے مطابق کام کرو. یہ امارہ, یعنی نفس بیچارہ اس مغالطے میں تو شروع میں ہوتا ہی ہے مجھ جیسے انسان کا نفس, کہ کیونکہ نفس جب آنکھ کھولتا ہے تو اپنے آپ کو جسم توئی میں پاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس غلط فہمی کا شکار تو شروع سے ہی رہتا ہے کہ میں جسم ہوں. لیکن تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد ظاہر ہے کہ خدا کی اور بھی نشانی ہے کہ جو اس کو یہ باور کراتی ہیں کہ تم محض جسم نہیں ہو. لیکن زیادہ تر انسان ان پیغامات کو رد کر دیتے ہیں, وہ جو سگنلز آ رہے ہوتے ہیں خدا کی طرف سے کہ تم محض جسم نہیں ہو, ان سگنلز کو قبول نہیں کرتے. تو وہ الٹیمیٹلی کس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں؟ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, بلکہ یہ چیز ان پر نقش ہو جاتی ہے نفس پر کہ میں جسم ہی ہوں. اگر جسم حالت سکون میں ہے تو میں سکون میں ہوں, اگر جسم تکلیف میں ہے تو میں تکلیف. تو اب یہ جسم جو سواری تھا وہ سوار بن جاتا ہے, اور سوار بن کے پھر آپ کو آرڈر دینا شروع کرتا ہے نفس کو اپنا محکوم بنانے کے بعد, کہ اب تمہیں سارے وہ کام کرنے ہیں جو میری پسند کے مطابق. اگر تمہیں صبح کی نماز کے لیے اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو مت اٹھو, میں بے آرام ہوتا ہوں اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کی. اگر تمہیں گرمیوں کے روزے رکھنے ہیں تو پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ میں آرام سے رہوں گا یا نہیں رہوں گا. یہ ہے امارہ, نفس کی امارہ والی حالت, امارہ تم بسو والی حالت. یعنی وہ جسم جو نفس کو دیا گیا تھا کہ اس سے کام لے, वो जैसे उलमा बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल करते हैं कि सवारी सवार बन जाती है, और इमाम की दुआओं में अक्सर ये जुमला आता है कि तू जो कुछ मुझे अता कर फजअलहु ली वला तजअलहु अलैया, जो भी नेमत दे वो मेरे लिए करार दे ना कि मेरे ऊपर, कोई भी नेमत, ये ना कि मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाए और मुझसे काम लेना शुरू कर दे, बल्कि सब कुछ मेरे इख्तियार में रहे ताकि मैं उससे काम ले सकूं।
देखिए
अब यहाँ पर मजाक का जो लफ्ज है ना, फिर इसकी तशरीह करना पड़ेगी, यानी मजाक का मतलब जैसे जहल की मैंने इसीलिए पीछे इतनी सारी तशरीह की कि जहालत का ताल्लुक जो है वो उस फैसला देने वाली ताकत से, कि आपकी फैसला देने वाली जो तुवत है जब वो फैसला सुना रही है वो मजाक में भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, यानी वो मजाक में भी गलत नहीं होना चाहिए वो फैसला जो आप सुना रहे हैं, यानी कि जैसे जो नॉर्मल मिजाज है वो उस फैसला देने वाली हद में आ जाएंगे तो फिर जहालत में आ जाएगा। मजाक से मुराद अगर आप मिजाह लेते हैं, मिजाह यानी कि नॉर्मली आपने कोई शगुफ्ता बयानी की, कोई हल्का फुल्का जुमला बोल दिया, वो नहीं, जहां पर आप एक डिसीशन दे रहे हैं, एक कलीदी फैसला आप सुना रहे हैं, अगर वो आप मजाक में भी कहें, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि एक शख्स ने आपसे पूछा, राय ली आपसे, ये तो बहुत कॉमन चीज है कि एक शख्स से आप बाहर खड़े हैं, उसने कहा कि ये रास्ता मेरी मंजिल की तरफ जाता है कि ये रास्ता जाता है, अब वो आपसे एक फैसला मांग रहा है, फैसला चाह रहा है, वो आपसे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, कोई आपसे किसी जुमलों का तबादला नहीं कर रहा, एक फैसला मांग रहा है, उस वक्त आपने मजाक में कह दिया कि नहीं ये जाता है, और वो बेचारा उस रास्ते में गया और तकलीफ उठा के वापस आ गया, तो आपने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, ये जहल, ये साहिब में जाता है। जी उसका ये कि फातरफ बेबम, तो वो अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे, अफाब सहीर, और जो असहाब सहीर है उनके लिए तो सिवाय जलने के और कुछ है नहीं।
ये आलम अकल और मौजूदात अकल ये इंसान से अफजल
बहुत ज्यादा, मतलब देखिए इंसान जो है वो एक वेरिएबल का नाम है, इंसान किसी फिक्स्ड या कांस्टेंट मखलूक का नाम नहीं है, वो वेरिएबल शैतान भी हो सकता है और वो वेरिएबल हामिलान अर्श भी हो सकता है, वेरिएबल यानी आपका जो नफ्स है ना वो सिर्फ एक सलाहियत का नाम है, मेरे पास शायद मुझे तौफीक हासिल नहीं है कि मैं इन लताइफ को बयान कर सकता, कदर हसीन ये नजरिया है कि खुदा ने इंसान को कोई शय नहीं बनाया, एक सलाहियत बनाया, समझ सकते हैं इस चीज को, कोई चीज नहीं बनाया इंसान को, सिर्फ एक सलाहियत बनाया है कि चाहे अर्श पे चले जाओ, प्योर पोटेंशियल
है। हम जो ये अखबार का जो मजमू है किताब जो है या तहरीर जो है और आप इनको भी बगैर हालत के नहीं बच सकते
जी, यानी कि वही मैंने अफसर्स किया, मैं ये मिसाल इसलिए देना चाह रहा था कि लफ्ज एक ही होता है लेकिन मुख्तलिफ मकामात के लिहाज से माने अलग हो जाते हैं, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जब हम लफ्ज अक्ल और रूह इस्तेमाल करते हैं ये दो लफ्ज खास तौर से, इनमें ये मिक्सअप बहुत ज्यादा है, कि जब आप इंसानी हवाले से रूह की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब कुछ और है, आप इस रूह को हैवानी हवाले से भी बात कर सकते हैं, वहां उसका मतलब कुछ और है। ये रूह मलाइका और आलम अमर में भी है, वहां इसका मतलब कुछ और है। तो मैंने ये कहा था कि जो तहारत है, कि ऐसा नहीं कि आप कहें कि वो किताब जो कुरान जो किताब है मखनून में, सिर्फ वही बगैर तहारत के नहीं छुआ जा सकता, और इस कुरान को मैं बगैर तहारत के छू सकता हूं, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान जिस आलम में भी मौजूद है, ऊपर से नीचे तक हर जगह उसूल एक ही है, लेकिन तहारत के माने डिफरेंट है। आप कुरान के जाहिर को छूना चाहते हैं तो आपका जाहिर बातहारत होना चाहिए, आप कुरान के बातिन को छूना चाहते हैं तो आपका बातिन बातहारत होना चाहिए, आप कुरान की रूह को छूना चाहते हैं तो आपकी रूह को बातहारत होना चाहिए।
ये तो मुसलमानों के लिए है,
देखिए इस्तेफादे के लफ्ज खुद बता रहे हैं ना कि ये चीज बातिन की तरफ जा रही है, जब आप लफ्ज इस्तेफादा कह रहे हैं तो ये चीज खुद बातिन की तरफ जा रही है, इदराक की तरफ जा रही है। तो बातिनी, जैसे वही मैंने आपसे कहा ना कि कुरान के बातिन को छूने के लिए बातिनी तहारत चाहिए, बातिनी तहारत किस चीज का नाम है, उसकी असल बुनियाद यह है कि जब भी हक समझ में आए उसके आगे झुक जाओ, और जहां भी बातिल समझ में आए उसको रद्द कर दो। जिस इंसान में भी ये क्वालिटी पाई जाती है उसका बातिन इतना ताहिर है कि वो कुरान से इस्तेफादा कर सकता है और अहले बैत से फायदा उठा सकता है।
सप्लाई
की
मिसाल दी,
ये अब इसमें असल में होता यह है कि नफ्स जिस दर्जे पर है उसी दर्जे का जिस्म और रूह मिल जाएगी उसको। अगर नफ्स सिर्फ हैवानी सतह पर है तो हैवानी जिस्म और हैवानी रूह, अगर नफ्स बुलंद होके मलकूती सतह पर आ गया तो मलकूती जिस्म मलकूती रूह। जो बात हमने की थी ना कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम के एक वक्त में इतनी इतनी जगह, एक वक्त में कई कई जगहों पर नजर आना, ये जिस्म इस जिस्म के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता, इसके लिए भी जिस्म भी और चाहिए। तो नफ्स अगर उस सतह पर एग्जिस्ट करता है तो वो मलकूती जिस्म मलकूती रूह, अगर नफ्स जो है वो अक्ल के मेयार पर है तो अक्ल मतलब वहां तो जिस्म है ही नहीं, उसकी तारीफ तो हम बयान कर ही नहीं सकते सच्ची बात, यानी कि फिर वो चीज। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना, नफ्स प्योर पोटेंशियल है, जिस मेयार पर मौजूद होगा उस मेयार की मखलूकात से इस्तेफादा करेगा। नहीं, साफेलीन की तरफ हम आ गए बेहतरीन फॉर्मूला रखते हुए, ताकि यहां से कुछ लेकर ऊपर जा सके, इसकी वजाहत होगी इंशाल्लाह। बल्कि ये मैंने जो सफात दिए थे उसमें एक जगह पर ये आयत है, क्योंकि हमें अब इस बात पर भी आगे चल के गुफ्तगू करना है कि क्या ये नफ्स खाली अच्छाइयां लेके इस दुनिया में आता है या इसके साथ कुछ मसाइल भी हैं, उन मसाइल को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कवर किया जाए। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.